ハレイクリシャ。バジャホレマンナ。バジャホレマンナ。ピラ。バジャホレマンナ、シリナンダナンダナ、アバイチャナラビンダレ。कौन कह रहा है? गोविंद दास। और आप क्या है? हाँ? सारे गोविंद दास हैं कि नहीं? जीवेरा स्वरूप, गोविंद नित्य दास है, है कि नहीं? हम सब गोविंद दास हैं कि नहीं? हाँ? तो फिर हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे मेरे मन नंद नंदन का भजन कर ले। बोले क्यों और कैसे? दो प्रश्न पूछो। क्यों करें? क्योंकि उनके चरण अभय दान देंगे, भय से मुक्त कर देंगे। कैसे करें? जैसे अभय चरण अरविंद ने सिखाया। ये फोरकास्ट है गोविंद दास की। हां, गोविंद दास ने कहा नंदन नंदन का भजन ऐसे करो जैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने बताया। दूसरे रास्ते से नहीं। ये इसका दूसरा अनुभव अनुभव की टीका है। भजाओ रे नंद श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। नंद नंदन का भजन ऐसे करो जैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ने सिखाया। दूसरे रास्ते से नहीं। तो ये तो फोरकास्ट है ना। ये साधु जब कहते हैं तो वो कुछ देखते हैं तब कहते हैं। कुछ और भी लिखा जा सकता था। भजहु रे मन दयानंद रे कह सकते थे। दया निधि है भगवान, ऐसे कह सकते थे। अभय चरणारविंद क्यों का? ये बहुत रहस्य के विषय है कि नंदनंदन का भजन सब कर रहे हैं लेकिन जो रास्ता अभय चरणारविंद ने बताया है वो रास्ते से भजन करेंगे तो क्या होगा? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। कहां करो सत्संग? अभय चरण अरविंद के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में। हाँ, नंद नंदन का सत्संग कहां होता है? विशेष रूप से ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण फोरकास्ट है गोविंद दास की। अपने मन को समझाना है, प्रार्थना कर रहा है कि नंद नंदन का भजन करो, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाह रहे हो तो फिर ये काम करो। नहीं होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुर्लभ मानव जन्म में फिर भी नहीं होता है। सत्संग में जाने का समय नहीं मिलता है। क्यों? क्यों नहीं मिलता है? दूसरी लाइन क्या है? शीत आतप बात परिजन एथित्याथ की ये दिन जामनी जाग। दिन रात सर्दी गर्मी ये तो हर साल आते हैं और जाते हैं और इन ये जब जैसे गुजरते हैं तब हम क्या काम करते हैं? क्या करते हैं? भी गाया है इसलिए नहीं गाया है कि टाइम पास करना है। गाने के बाद इसको खाना चाहिए, हजम करना चाहिए। शीत आतप, शीत आतप सर्दी गर्मी, बात बरिशन बरसात, बरिशन तो बरसात हो गया और बात क्या है? आंधी। बात हवा तेज, बात वातानुकूल, ये वातानुकूल एसी हो गया ना, ये बात से ठंडी हवा। वात बरिशम ए दिन, दिन जामिनी रात जागी रे। विपले सेवने कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। दिन हो रात हो आंधी हो तूफान हो बरसात हो लेकिन हम एक ही काम में लगे हुए हैं। किस काम में? चपल सुख। चपल सुख का मतलब चपल का सुख। चपल सुख का मतलब चपल का सुख। मत मैंने कभी आपको बताया चपल का सुख नीचे, क्योंकि इसके नीचे लिखा है धन यौवन पुत्र परिजन, धन जवानी पुत्र परिवार, एथेति आछे की परती रे। चप्पल एक पत्नी महीने से कह रही थी पति के लिए मैंने चप्पल लाना, बेचारा काम से रोज आता भूल जाता। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे घर आया भागता हुआ चप्पल के दुकान पे गया, चप्पल दो, कौन सा बोला लेडीज क्या साइज, ऐसे करके देखा, देखो बोला निशान होगा पूछे नाप लो, निशान पूरा पड़ा है देख लो साइज तुमको मिल जाए। इसको बोलते हैं चप्पल सुख। ये चप्पल सुख की नई परिभाषा है। इसको प्रभुपाद जी की परिभाषा में है, गधी की लात खाता रहता फिर भी गधा पीछे भागता रहता, इसको चप्पल सुख कहते हैं, लात खाना। तो इसलिए मैं इसको चप्पल कहता हूं, वो लात ही है। चप्पल सुख लव लागी रे, और लव लव का मतलब थोड़ी देर होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी लव कह दो। ये अंग्रेजी वाला लव, इसका सुख जो है वो चप्पल वाला सुख है। क्या लगता है आपको, लव मतलब तो थोड़ी देर के लिए, चप्पल का मतलब अभी रहेगा फिर नहीं रहेगा, आया और गया, लेकिन परिभाषा बदल दो के अंग्रेजी लव वाला सुख चप्पल वाला सुख है, ये ठीक तरह समझ में आना चाहिए, तब मन नंद नंदन का भजन करेगा, नहीं तो किसका करेगा। धन जोवन पुत्र परिजन, बोला कितने दिन रहेंगे, कमल जल, कमल जल डल जीवन टल मल, कमल के पत्ते के ऊपर जल कभी रुकता नहीं है, ये जवानी ये धन कभी एक जगह रुकने वाला नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हुआ, और ये सारा तुच्छ सुख है। इसलिए क्या करो, भजौ हरि पद नीति रे, भगवान हरि, अब हरि के पद की बात कर रहे हैं, पहले कहा अभय चरणारविंद के पद, अभी हरि का पद, अभय चरणारविंद रे हरि पद नीति रे, ये नीति अपनाओ, कुनीति को छोड़ो, सुनीति अपनाओ, हरि के चरणों का भजन करो। कैसे करें, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे, नवदा भक्ति के नौ अंग बता दिए। तो ये है प्रार्थना, प्रार्थना है भक्त की अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाने के लिए, ये प्रार्थना है। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में देवताओं की प्रार्थनाएं, देवताओं की प्रार्थनाएं भगवान नारायण को, तो आइए उसको भी शुरू करें। श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेता है इस्कान पंजाबी विभाग में, शनिवार के भागवत सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का नवा अध्याय चर्चा का विषय है वृत्तासुर, वृत्त नाम के असुर की उत्पत्ति। इस अध्याय में पहले भाग में, पहले इस अध्याय का मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, जब उनकी भक्ति बढ़ती है तो उनका पोषण करते हैं, और जब कोई आंधी तूफान आते हैं तो उसका रक्षण करते हैं। तो पोषण या रक्षण भगवान ऐसे करते हैं इस जगत में अपने भक्तों का, जैसे खेत में अथवा बगीचे में माली अपने हाथ से उगाए हुए पौधों का संवर्धन और रक्षण करता है। तो यहां इंद्र से अपराध हुआ, अपने गुरु का सम्मान न करके अपने सारे सुख संपत्ति धन वैभव से वंचित हो गया, और जवान से भी नहीं, केवल उठा नहीं गुरु जी के आने के ऊपर। वैसे बड़ा बुजुर्ग कोई सम्मान्य व्यक्ति आए तो उठ के उसका आदर करना चाहिए, ये मर्यादा है। इसका उल्लंघन करने से बल, बुद्धि, विद्या, यश सब नाश होता है। तो गुरु का सहारा नहीं मिला तो तुष्टा के बेटे विश्वरूप को गुरु स्वीकार करके और नारायण कवच प्राप्त किया। तो ये भगवान की रक्षा नाद के द्वारा है, जैसे नाम से अजामिल की रक्षा हुई, तो नाम से रक्षा अजामिल की हुई भगवान के नाद से, शब्द से। जैसे अभी हरे कृष्ण जपते हैं, ये क्या है? ये शब्द है, ये भगवान का नाम रूप है। ये नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो ये शब्द है, ये ध्वनि है। प्रभुपाद ने इसको कहा है ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये दिव्य ध्वनि है, ये रक्षा करती है हमारी, भगवान की भक्ति की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है? इसको कहा है जले सिंचन करें, श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करें। तो ये हमारी भक्ति की रक्षा करती है कि पौधे को जल देते हैं ऐसे तो बड़ा होता है, तो उसकी सुरक्षा करती है। तो ये नाद के द्वारा, ब्रह्म नाद, ब्रह्म शब्द, नारायण कवच के द्वारा रक्षा का, इंद्र की रक्षा का साधन भगवान ने बताया। और वृत्रासुर ने अपने नाना के कुल के प्रभाव के कारण देवताओं को इंद्राय नमः इति इंद्राय इदम् नमः, ये तो जोर से बोले, और आस्ते बोले, नाना के कुल को भी कुछ मिले, कुछ पीछे से डाले कुछ आगे से दे। तो इंद्र बुद्धिमान नहीं, तो इंद्र ने एडमिनिस्ट्रेटिव डेमी गार्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा उसके पास है। वो सुरेश है, सुर का मतलब ईश्वर, सुर का मतलब देवता, ईश का मतलब उन सब का नियंता, देवताओं का लीडर है। उसने देख लिया विश्वरूप का गर्दन काट दिया, एक भी नहीं, तीन तीन गर्दन थे कट गए, ब्रह्म हत्या का पाप लगा, पाप चार भागों में बांटा, ये इस अध्याय का विषय है। ब्रह्म हत्या के पाप को चार स्थानों में बांटा, जिसका पुत्र मर गया उस बाप को दुख हुआ कि ले गए थे पुरोहित बनाने के लिए और सर ही काट दिया, पुत्र ही मार दिया, ये तो बड़ा दुख का विषय है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ से इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करने का अनुष्ठान किया, मंत्र उच्चारण में त्रुटि हो गई, तो पैदा तो हुआ, फल तो मिला, लेकिन फल मिला उसका जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। फिर भी वृत्रासुर उस यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ, बाप से नहीं उत्पन्न हुआ, मां से नहीं उत्पन्न हुआ, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ। और यज्ञ कुंड से कौन उत्पन्न हुआ, किसी को दो नाम लो, द्रौपदी याज्ञ की उसको बोलते, दृष्टद्युम्न उसका भाई, ये यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए। और यज्ञ कुंड से नहीं, लेकिन यज्ञ के कार्य में से कोई और उत्पन्न हुआ हो, सीता यज्ञ के लिए हल चला रहे थे महाराज जनक, यज्ञ के जो स्थान शोधन करते हैं उसके लिए हल चलता है, सोने का नीचे हल का जो फाल होते हैं उसको सीत बोलते हैं, और सीत बोलते हैं उसको। तो उस सीत के लगने से, अंदर से मटके के अंदर से जो ये पृथ्वी की कन्या प्राप्त हुई, उसका नाम हो गया सीता। तो ये भी इसको अशुक्ला है, शुक्ल मतलब वीर्य से उत्पन्न नहीं है, अशुक्ला अयोनिज है, योनि से उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो ऐसे ये वृतासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही देवताओं का तेज हर लिया, और देवता प्रार्थना करके कहते हैं कि हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी शक्ति, हमारा बल सब उसने हमसे हर लिया। तब देवता और कोई रास्ता न देखकर भगवान की प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना कर रहे। अब देवताओं की प्रार्थना और जो भजन गाया अभी केशव मुरारी प्रभु ने, इनके दोनों में अंतर क्या है? हाँ, दोनों में अंतर क्या है? जो प्रार्थना ये देवता इंद्र आदि कर रहे हैं भगवान की, और जो अभी प्रभु केशव मुरारी ने भजन गाया, इन दोनों में ये भी प्रार्थना की, इन दोनों में अंतर क्या है? देवता तभी प्रार्थना, बोले बोले कृष्णचंद्र, देवता तभी प्रार्थना करते हैं जब असुर कोई उनके पीछे पड़ता है। इसका मतलब कभी कभी असुर का भय भी भक्ति में सहायक होता है, और ये भागवत की टीका में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि देवकी माता कंस क्रूर के भय से बहुत उसका शुद्ध हुआ अंतःकरण, तब उसमें कृष्ण प्रकट हुए। तो असुर का भय काम क्रोध लोभ मद मत्सर रूपी असुरों को मारने में सहयोग करता है। तो कभी ऐसे नहीं समझा कि जब कोई दुख आता है तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो भी बहुत बड़े लाभ के लिए होता है। भाई दर्द सहता है तब कुछ मिलता है। हमको कहा कि बहुत रशिया के अंदर भगवद गीता के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भाई भगवान की इच्छा होगी कोई कि जब ऐसे कोई आपके ऊपर आक्रमण करेगा तब आप सब इकट्ठे हो गए, नहीं तो आप सब अपना अपना अलग अलग दुकान खोल के बैठे हो। अब एकदम सब इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? तो आपकी यूनिटी करने के लिए असुर हमारा हित करते, अहित हमारा करते, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये दूसरी दृष्टिकोण देखनी की है कि इस वृतासुर तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था ना, और वो हम जानते हैं कि चित्रकेतु था, बलराम जी का शिष्य था, वो तो संकर्षण बलराम जी का शिष्य था, और बलराम जी का काम है लोगों को जबरदस्ती भक्ति में लगाना, हल से खींच के लगाए या डंडा मुसल मार के लगाए, लेकिन लगाना ही है। तो देवताओं के लिए भी तो कुछ करना है ना, तो तब पैदा किया वृतासुर को। ये तो सारा दिन बैठा गया, ये इंद्र बैठा है, इतना बड़ा गाने सुनने में मगन है, गुरु आता उसका भी सम्मान नहीं करता है, तो इसको सीधा तो करना चाहिए ना। क्यों भाई, ठीक लगता है कि नहीं लगता है? भाई ऐसे नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? भाई गुरु आया तब भी इंद्र ऐसे बैठा रहा, इसका मतलब इंद्र को सावधान करने के लिए कुछ करना चाहिए ना। तो बलराम जी ने अपने शिष्य को असुर के रूप में भेजा कि जाओ इसको डराओ, और उसके डर के कारण, और केशव मुरारी जी किसी के डर के साथ गाने के बाद आराम से सो सकता है तो डरता है किसी से? क्यों भाई कैसे नहीं? भाई गाने के साथ एक नारद गीत में लिखा है भागवत में कि जब नल कुबेर और मणि ग्रीव को नंगे स्त्रियों के साथ गंगा में मंदाकिनी में नहाते देखा, अलकनंदा मंदाकिनी जो भी है, कि जहां गंगा में लोग पवित्र होने जाते हैं वहां वो नंगा लड़कियों के साथ नाच रहा था, तो नारद को उसके ऊपर क्या आया, क्रोध आया कि करुणा हुई? नारद ने सोचा कि मुझे क्रोध तो कहीं नहीं आ गया, सोचा, तब गाना शुरू किया और गाया, बोला नहीं क्रोध होता तो नहीं गा सकता था, इसका मतलब क्रोध नहीं है तब मैं गा रहा हूं, क्रोध में आदमी गा नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता है। तो फिर नारद ने कहा नहीं, इनके ऊपर करुणा दया मेरे हृदय में आई है, मैं देव ऋषि हूं, ये देवताओं के पुत्र है, मेरा धर्म है इनको सुधारना। तो जो प्रेम से भजन गाता है वो गाने के बाद आनंद में समाधि में भी जा सकता है, लेकिन देवता ऐसे नहीं कर सकते, देवता ऐसे नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है दोनों में। उनकी प्रार्थना का उद्देश्य भय से मुक्ति है और भक्त की प्रार्थना का उद्देश्य तुष्यंती च रमंती च, तुष्यंती च रमंती च, तुष्ट होकर आनंद में बच्चों की तरह या तो खेलते रहते हैं और या समाधि में भी चले जाते हैं तो भी भगवान का दर्शन ही करते रहते हैं। तो वो देवता और भक्त में अंतर क्या है कि वो जाते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सुनते भी हैं, लेकिन वो तब जाते हैं जब उनको कोई संकट आता है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब व्याकुल होते हैं तब जाते हैं। लोग संडे संडे मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि छह दिन व्याकुल होते हैं तब आते हैं। जो रोज आते हैं वो अनुकूल है, बाकी व्याकुल है। नहीं, ये सीधी बात है भाई, संडे इसलिए लोग आते हैं कि बाकी छह दिन परेशान होते हैं। तो सातवें दिन सांस लेने के लिए आते हैं कि जाते हैं आज थोड़ा सांस लेंगे आराम से। नहीं तो ये, हरे कृष्ण, सत्य ये है। तो 31 श्लोक से लेकर इस अध्याय में 45 श्लोक तक देवताओं की प्रार्थना है। 31 से 45 तक देवताओं की प्रार्थना है और प्रार्थना में जाके 16 श्लोक में प्रार्थना है, ऑलमोस्ट 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि आप हमारा वृतासुर से उद्धार किए। तब तक तो प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने काम की बात नहीं कहते, अपने समस्या की बात 15-14 श्लोकों की बात कहते हैं, पहले नहीं कहते। ये भी कहने की शैली होनी चाहिए, सीधा ही आके बोले ए राधा राधिका रमण जी हमारे बच्चे को पास करा दो। अरे पहले 15 मिनट सत्संग कीर्तन तो करो, कुछ बुरा नहीं, कुछ तो पहले शुरू शुरू में प्रार्थना तो करो ना, कम से कम ये देवता सिखा रहे हैं। चलो भाई आपको परेशानी है तब आयो तो भी थोड़ा प्रार्थना में, आप प्रार्थना के मैं 2-4 आपको शब्द इस श्लोक से पहले के सुनाता हूं, देवता कैसे प्रार्थना। ओम नमस्त्यस्तु भगवान नारायण वासुदेव आदि पुरुष महापुरुष महाअनुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगत आधार। इतने शब्द कहे हैं देवताओं ने भाई, सीधा थोड़ी कहा है कि हमारी समस्या का समाधान करो। पहले तो उसके, और जब ये सुना है ना तो देवता कह के जब थक गए चुप हो गए तो सुखदेव गोस्वामी दोनों को देखा, देवताओं को देखा कि बेचारा प्रार्थना करके अपनी बात कह के अब सर नीचे करके खड़ी है, और भगवान की तरफ देखा तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान बोले के शब्द लिखा है, भगवान ने बोला है एक शब्द, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते परीतो अहम प्रीतो अहम, मैं संतुष्ट हुआ तुम्हारी प्रार्थना से। तो भगवान मैं संतुष्ट हुआ ये कहते हैं, तो रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए ना, हम प्रार्थना करें सामने वाला सुने ही नहीं और कुछ उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़े। अब भगवान कहते हैं मैं संतुष्ट हुआ, अब मैं आपकी प्रार्थना से संतुष्ट हुआ। तो प्रार्थना काय के लिए करनी चाहिए भगवान को? संतुष्ट करने के, प्रसन्न करने के लिए। इसलिए एक सिद्धांत है, हम सुबह जप भी करते हैं ना तो पहले संकल्प करना चाहिए, श्री कृष्ण प्रीति अर्थे हरि गुरु वैष्णव प्रति अर्थे जप विनियोग, मैं हरि गुरु और वैष्णव की प्रीति के लिए जप कर रहा हूं, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप कर रहा हूं, 16 माला पूरी करने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये पहले संकल्प करना चाहिए ना, हम मैं दास आस दास अनु दास हूं। अब मैं इसको भूत सिद्धि बोलते हैं, भूत सिद्धि का मतलब भूत को सीधा करना, ये हमारी भाषा है। वैसे भूत सिद्धि का मतलब भूत को सीधा करना, हमको भूत लगा हुआ है, किसी का बाप हूं, किसी कंपनी का मालिक हूं, तो ये हमको जो भूत लगे हैं इसको उतारना पड़ता है पहले भगवान के भजन से पहले। तो मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, फिर कहना पड़ता है मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास हूं, अब मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए। यह संकल्प करना चाहिए कि क्यों कर रहे हो भगवान, पूछे तुम जप रहे हो क्यों जप रहे हो भाई, तुम हरे कृष्ण रोज क्यों जप रहे हो। हम जब शुरू करने से करते हैं तो कोई हमारा मतलब होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, कभी हमने सोचा है कि हम क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो रागनु का हुआ, डायरेक्ट रागनु का कर रहे हैं, नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में सारे देवता हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं, आइए ये श्लोक पढ़े, इसके बाद भी देवता अभी दो चार श्लोकों के बाद कहेंगे कि वृत्तासुर से हम परेशान हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। तो पहले प्रसन्नता के लिए भगवान की महिमा गुणगान करना चाहिए। अब रोज जब यहां खड़े हों तो कुछ मंत्र से भगवान का कुछ प्रार्थना अपनी टूटी फाटी भाषा में, जैसी आपको भाषा आता है उसी भाषा में, भगवान को सब भाषाएं आती है, लेकिन कहना चाहिए आज बहुत गुलाबी पगड़ी आपकी भगवान सुंदर लग रही है, ऊपर देखे कितना ग्रीन, ऊपर वो हरा हरा सा सुंदर कितना लग रहा है आपका, माला गले में कितनी, कंठ में, हाथ में सुंदर, ये कुछ तो जैसी भाषा है उसमें पूरा, ऐसे किसी को देखते हैं वो तो उसको कहते हैं तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, उसको तो कहते हो, तो ये भगवान को भी तो कहना चाहिए कि तुम्हारा आज बहुत सुंदर श्रृंगार है, आज काले वस्त्र क्यों पहने हैं, अमावस्या है क्या, पूछना चाहिए, हमारे दिल तो कब से काले हैं, लेकिन आज आपने हमको दिखाया कि हमको सफेद होना चाहिए, भाव देखो कि अभी क्यों, पता लगता है जो जो बुद्धिमान भक्त होते हैं ना उनको पता लगता है भगवान को देख के कि कौन सा दिन है, और भगवान के पट खुलने से पता लगता है कौन सा टाइम है, दिन टाइम के कैलेंडर की जरूरत नहीं है, भगवान को देख से पता टाइम का, अरे रोज के ड्रेस के भी रंग रंग नियुक्त किए हुए जो पुजारी हैं उनको मालूम होता है, तो कम से कम एकादशी का, पूर्णिमा का और अमास का तो पता लगता है, पूर्णिमा का पीछे व्हाइट व्हाइट होता है ड्रेस, क्यों भाई पुजारी बाबा पूर्णिमा व्हाइट, वो आज क्या अमावस है क्या सचमुच, हाँ शनिवार, हरे कृष्णा, देवताओं की तरह डरते हैं देवता वृत्तासुर से, और ये सब शनि से डरते हैं, और दिल्ली वाले तो ऐसे शनि से डरते हैं यहां से भाग के सीधे ब्रज में जाते हैं, लेकिन वहां भी कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, शनि के पास जाते हैं, आ? और कोकिला वन में जाते हैं ना, वहां कोकिल वन में रहता है श्री कृष्ण, क्या नाम है उसका, कोकिल बिहारी, कोकिल बिहारी के मंदिर में नहीं जाते, उसी मंदिर के आगे से जाते हैं सीधे शनि बाबा के पास, आगे से ऐसे घूम के, क्या विचार है, शनि खुश होगा, बोलेगा मेरे बाप को प्रणाम नहीं कहीं नहीं किया है, मेरे पास सीधे आए हो, वो क्या कहेगा, मैं अपनी भाषा में नहीं बोलना चाहता हूं, मेरी भाषा बहुत टेढ़ी है, अरे वो जगत पिता बैठा है उसको प्रणाम करो, फिर तुम्हारे को आना है तो मेरे पास आओ, पहले उसके लिए घी 1 किलो लाओ, फिर मेरे ऊपर तेल डालो, उसको मक्खन घी चाहिए लाए नहीं, तेल उठा के उसके सामने से मेरे ऊपर डाल ले, कोई काम की बात है नहीं, अरे उन्हें ऐसे तेल ही डालना तो अपने घर के बाहर कहीं मंदिर बना के डालो, ब्रिज में आके क्यों डालते हो, यहां सारी उम्र मक्खन चला है, अब तेल शुरू कर दिया, मक्खन की नदियां बहती थी जिस ब्रिज में, वहां तेल की नदियां बह रही, कलयुग आया कि नहीं आया, तो आज शनिवार है, अरे शनि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है भाई, सूर्य का पुत्र है, यमुना का भाई है, और यमुना भगवान की पटरानी है, तो भगवान श्री कृष्ण का साला हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, कालिंदी का भाई है, यमराज का बेटा है, और बहुत बड़ा कृष्ण भक्त है, और आप जो अगर आप कोकिल बिहारी को प्रणाम करके फिर जाओगे तो आपको फिर बार बार आने के लिए परेशान भी नहीं करेगा, हाँ उसकी मर्यादा है उसको पालन करना चाहिए ना, अरे कृष्ण ये उसी अपराध के अंतर्गत आता है, ये देवता की पूजा जैसे भगवान समझ के करना अपराध है, ये भगवान के सामने اس کو دوسری بھاشا آج کل کی میں کیسے کہنا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سدھانت آپ کے آپ نے کہا اس لیے میرے مکھ سے نکلا. ہرے کرشنا شنی دیو کی جائے. ہاں بھگوان کا بھکت ہے، شنی اور لکشمی دونوں بھگوان نارائن کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بتائیے آپ میں سے اچھا کون لگتا ہے. اب دونوں بھگوان کے اپنے پریے ہیں. بھگوان نے کہا ایسے کرو سامنے جاؤ، وہ ہاتھ لگا کے دروازے کو واپس آؤ. دونوں واپس آئے، دونوں کی اور مسکرا کے کہا لکشمی تم جب آتی ہو تو اچھی لگتی ہو اور سنی تم جب جاتے ہو تو اچھے لگتے ہو. دونوں تمہارا شنی جانا بڑا اچھا لگتا ہے اور لکشمی کی آنے کی چال اور شنی کی جانے کی چال. تو دونوں کو بھگوان نے سنمان کے ساتھ کہا کہ دونوں اچھے ہو. ہرے کرشنا. تو آئیے اس شلوک کو پڑھتے ہیں. دیوتا کیا کہہ رہے ہیں، پرارتھنا کر رہے ہیں، بھگوان کے سامنے کھڑے ہیں. سے وہی پنہ سارو وستو نیوستو سوروپہ سارویشورہ سکل جگت کارن کارن بھوتا سارو پرتیگاتمواتا سارو گنا بھاسو پلکشتا ایک ایو پریا ووشیتا. سہ وہ کا مطلب شری بھگوان، ایو نسندیہ ہی نشچے ہی پنہ پھر سارو وستونی بھوتک تدھا ادھیاتمک سبھی وستوں میں وستو سوروپہ وستو سارو ایشورہ سبھی وستوں کے نیمتا سکل جگتا سمپورن برمانڈ میں کارنا کارنوں کا کارن بھوتا کارن بن کر سارو پرتیک آتم تتوات پرتیک وستو کا پرماتما ہونے اتوا پرتیک وستو میں یہاں تک کہ پرمانو میں بھی اپست ہونے کے کارن سارو گنا پرکرتی کے سبھی گنوں کے پربھاووں کا یتھا بدھی تتھا اندریاں آبھاس پرکاش سے اچھا پرکاش سے اپلکشتا دیکھا گیا ایک اکیلا ایو نسندیہ پریوشیشت شیش چھوٹا ہوا. انواد پرم پوجیہ ابھیچرنار بھکتی ویدان سوامی شیلا پرابھوپاد جی دوارا. ویچار ومرش سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پرماتما یدیپی وبھن پرکار سے پرکٹ ہوتے ہیں کنتو پرتیک وستو کے مول تتو وے ہی ہے. سمپورن بھوتک شکتی اس سنسار کا کارن ہے کنتو یہ شکتی انہی سے ادبھوت ہے، ات وے ہی سمست کارنوں کے کارن ہے اور بدھی تتھا اندریوں کے پرکاشک ہیں. وے پرتیک وستو میں پرماتما روپ میں دیکھے جاتے ہیں، ان کے بنا پرتیک وستو مرت ہو جائے گی، پرماتما روپ میں परम न्यंता ही एकमात्र शेष बचा है। ये देवताओं की प्रार्थना भगवान सर्व कारणों के कारण है। जब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा तब केवल भगवान ही बचेगा, इस भाव से ये प्रार्थना है। जैसे भागवत चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक है वैसी ये प्रार्थना है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सर्व वस्तु ने वस्तु स्वरूप, जो सर्व वस्तु ने वस्तु स्वरूप जो शब्द है, इससे सूचित है कि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत हैं। प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत हैं। कल प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे जो भाग्यशाली यहां आए थे, प्रभुपाद ने उसमें क्या बताया, सर्व कारण कारण एक आया था, से सब वस्तुओं के मूल कारण भगवान है। कौन से विषय में बोला था, किसी को याद है कल प्रभुपाद जी ने? हाँ, देव चोदित शब्द था। जो कुछ हो रहा है देवताओं के, मतलब दिव्य भगवान के शक्ति से हो रहा है, लेकिन वो सर्व कारण कारण किस विषय में कहा था प्रभुपाद ने कल? जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया एक के टेस्ट ट्यूब बेबी का उदाहरण दिया, भाई जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुष का और स्त्री का दो एक एक क्या कहते हैं सेल, सेल को क्या कहेंगे, लेकर टेस्ट ट्यूब में बेबी बनाते हैं। और जो ये काम करते हैं उसका नाम अखबार में छपता है कि देखो उसने बड़ा चमत्कार करके दिखाया बड़ा। प्रभुपाद जी पूछते हैं ये दोनों जो जो पुरुष का और स्त्री का जो वो लाए सेल वो किसने बनाया? जिसने वो बनाया उसके ऊपर किसी का ध्यान जाता है? उसका कारण कौन है? उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? जो उसका कारण है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए ना। ये सारी दुनिया प्रकृति कर बना रही है चला रही है ये तो ठीक है, लेकिन इस प्रकृति का कौन नियंता है? अब देखिए जितने लोग इस दुनिया में उनकी दृष्टि इस प्रकृति तक ही जाती है, इसलिए इस प्रकृति के चलाने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे आगे मालूम नहीं है कि इस प्रकृति और ये प्रकृति के देवता किसके लिए काम करते हैं, ये मालूम नहीं है। इसलिए उनकी समझ इतनी है कि ये दुनिया इन्हीं से चल रही है बस हो गया, इससे आगे जानकारी नहीं है। लेकिन ये देवता खुद आज कह रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो देवता खुद कह रहे हैं आज, ये प्रभुपाद ने उदाहरण कल दिया था कि ब्रह्मा जी को नारद ने जब पूछा कि पिताजी ये सृष्टि सारी आप ही ऐसे करते हैं, इस दुनिया को आप ऐसे पहचानते हैं जैसे आपके हाथ पे अखरोट रख दिया जाए, तो अखरोट को देखने में आपके लिए कोई परेशानी है क्या? छोटा अखरोट चारों ओर से देखा जा सकता है ना, तो ये भूगोल ये पूरा दुनिया आपके हाथ में अखरोट के बराबर है, आप ही इसको पैदा करने वाले हो, मेरा आपको प्रणाम है। तो ब्रह्मा जी ने कानू के ऊपर हाथ रख के कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, मैं इसका कारण नहीं हूं, इसका आदि कारण भगवान है, उसकी शक्ति से उसकी प्रेरणा से उसकी आशीर्वाद से ये कार्य मैं करता हूं। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, नारद को कह रहे हैं। तो जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं इस दुनिया वाले, वो देवता भगवान की यहां प्रार्थना कर रहे हैं। बताओ जब देवता ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको किसकी प्रार्थना करनी चाहिए? सीधा सा सिद्धांत है, सीखना चाहिए कि देवताओं की प्रार्थना का उद्देश्य यहां अपनी समस्याओं का समाधान भगवान से कराना है। तो हम अपनी समस्याओं का समाधान देवताओं के पास कराने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो फिर भगवान को जाके परेशान करते हैं कि ये मेरे सर खा रहा है इसके लिए क्या करना चाहिए, हा? तो क्या करना चाहिए, क्या विचार है? सारे कारणों का आदि कारण कौन है? ये देवता कहते हैं हम कारण नहीं है, भगवान कारण है। भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में अणु परमाणु में वो है, जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मर गया, ऐसे परमात्मा इस सृष्टि से निकल जाए तो यह सृष्टि समाप्त, प्रलय हो गया। ये शरीर के अंदर जैसे आत्मा आधार है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा आधार है, वो नहीं रहा तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो वो कह रहे हम आपकी वजह से जी रहे हैं। देवताओं के हृदय में परमात्मा होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। और गोलोक धाम में जो भक्त रहते हैं उनके हृदय में नहीं, उनके हृदय में क्या है? कृष्ण है डायरेक्ट। इसको कैसे समझेंगे? हृदय है दर्पण, दर्पण समझते हो, जिसका धर्म दर्पण चमकता है उसके सामने जो है वो उसमें दिखता है। जब काला दर्पण होता है तो उसके पीछे छुपा के परमात्मा को रखा है कि इसको धो के साफ करो तब दिखेगा, लेकिन वहां तो सब वही है जिनका शीशा साफ है, तो सामने रहता ही कृष्ण है, तो दिखता ही कृष्ण है, परमात्मा की जरूरत नहीं है वहां तो। वहां तो शुद्ध हृदय वाले सब रहते हैं ना। विशुद्ध सत्वम वासुदेव शब्दते, जो विशुद्ध सत्व में है उनके हृदय में भगवान दिखते हैं। तो परमात्मा, अब प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्या क्या कहा गया, एकदम प्रभुपाद जी का जो शैली प्रचार की है, जो यहां शास्त्र में कहा गया है, वही चीज ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद जी पुष्टि कर रहे हैं। एकोपि असौ रचयितुं जगत अंड कोटिम य शक्तिर अस्ति जगत अंड चया यदंत अंडांतर इस परमाणु चयांतर स्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक को देखकर प्रभुपाद जी को कौन सा श्लोक याद आया? ब्रह्म संहिता का। क्या देखा इसके अंदर? अणु अणु में, कण कण में परमात्मा है। और ये श्लोक ब्रह्म संहिता का क्या कहता है? मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। अपनी शक्ति से, जिसकी शक्ति है शक्तिमान को प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि प्रभुता को भजे सब प्रभु को भजे न कोई, प्रभुता को भजे सब प्रभु को भजे न कोई। दुनिया में सब लोग प्रभुता को भजते हैं, जो प्रभु से उत्पन्न संसार में जो चमत्कार की चीजें उसको भजते हैं, और प्रभु को भजे न कोई। जो प्रभु को भजे एक बार तो प्रभुता काय को होए, तो फिर दुनिया का बंधन ही ना पड़े ना। तो प्रभु को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, मालिक को छोड़ के जब संसार को भजन करता है आदमी, तो फिर संसार का होता है। भगवान का भजन करेगा तो भगवान का हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं। कोई श्लोक आता है याद? गामा विश्यांच भूतानि धार्यामि अहम ओजसा। मैं हर एक ग्रह के अंदर प्रवेश करता हूं। प्रभुपाद जी इस बात के ऊपर कल कह रहे थे, विज्ञानक ने एक जहाज बनाया, आकाश में उड़ता है तो हम कहते हैं ओ कमाल है, देखो कितने आदमी लेके उठ रहा है, लेकिन इतने तारा मंडल ऊपर जो कभी से उड़ रहा है, गिरा ही नहीं, उतरा ही नहीं, रनवे बनाने की जरूरत नहीं उसका, कभी किसी ने कहा है कितने आकाश में सब उड़ा रहा है बगैर तेल के? कभी किसी ने सोचा उसके ऊपर? कल कल प्रभुपाद का ये विषय था ना, जहाज उड़ता है तो बोला इतना बड़ा कमाल हो गया, और इतने सारे ब्रह्मांड अपनी जगह पे। कहीं लिखा है कि एक इंच अगर चंद्रमा अपनी जगह से नीचे आए तो समुद्र पूरी बंबई को डुबा सकता है। सच है झूठ है? सूर्य एक इंच अपनी जगह से नीचे आए तो 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो सकता है। हाँ, लेकिन नहीं आता है। क्यों? एक बार प्रभुपाद ने कहा समुद्र के किनारे सुबह सुबह लोग बड़े शौक से घूमने जाते हैं, ये विश्वास है कि समुद्र उनके ऊपर चढ़ के नहीं आएगा, डुबाएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? भगवान नियंता है, उसको आगे आने नहीं देता है। नहीं आता है ना, नदी अपने किनारे से बाहर नहीं जाती है। विश्वास होता है, किसके ऊपर विश्वास है? भगवान के ऊपर विश्वास है, तब इतना कर रहे, नहीं तो कैसे करते। तो ये श्लोक देख के समझना चाहिए कि ये दुनिया की कंप्यूटर, आजकल दुनिया में सबसे कंप्यूटर सब काम कर सकता है। कंप्यूटर को किसने बनाया? हाँ, कंप्यूटर को किसने बनाया? हाँ, साइंटिस्ट ने। तो साइंटिस्ट के ब्रेन को किसने बनाया? तो कौन बड़ा, साइंटिस्ट के भगवान? तो जिसने साइंटिस्ट के ब्रेन को बनाया उसकी तो उसी को तो याद ही नहीं करते हैं, और साइंटिस्ट को पुरस्कार देते हैं, नोबल प्राइज। कौन है को हमारे हमारा वो साइंटिस्ट पुराना कहता था, पेड़ से सेब को गिरते देखा न्यूटन ने, क्या कहा? लॉ ऑफ ग्रेविटी। किसका नाम क्या लिखा ऊपर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन के लॉ से पहले क्या सेब ऊपर उड़ जाते थे? तो न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ है कि कृष्ण ग्रेविटी का लॉ है? हाँ, तो उससे पहले सेब नीचे नहीं गिरते थे क्या? हाँ, तो न्यूटन का लॉ हुआ ग्रेविटी का कि भगवान का लॉ हुआ? फिर न्यूटन ने अपना नाम क्यों लिखा? श्रेय, अरे भक्त बन के श्रेय भगवान अपने आप देते हैं, लेकिन असुरी प्रभाव से तुम भगवान की प्रभुता के मालिक बनना चाहते हो तो रावण और हिरण्याकश्यप की तरह समय के काल के गाल में चले जाओ। तो किस ये सारा भगवान के द्वारा स्थापित है, ये समझना चाहिए, उसको श्रेय देना चाहिए पहले। किसी सुंदर को देखते हैं तो सुंदरता को देखते रह जाते हैं। और एक संत ऐसे सुंदर कन्या को देख रहा था, तो किसी ने कहा महाराज साधु होके कन्या को क्यों देखते हैं? बोला इसको नहीं देख रहा हूं, इसके बनाने वाला कितना सुंदर होता है उसको देख रहा हूं। इससे तो उस दुनिया की सुंदरता से इसको बनाने वाला दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं भक्त। जो इसकी संसार की सुंदरता को भोगना चाहता है वो क्या है? असुर है। दुनिया की सुंदरता से भगवान याद आ जाए कि जिसने इसको सुंदर बनाया है वो कितना सुंदर हो, तो फिर समस्या का समाधान हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वे प्रत्येक अर्थात अंतर्यामी है। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र 13वें अध्याय का नाम क्या है? 13वें अध्याय भगवद गीता के का नाम क्या है? हाँ जी, पुरुष और क्षेत्रज्ञ। अच्छा, एंजॉयर प्रकृति, और सामान्य इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, श्री अर्जुन के प्रश्न है पहले, जो कुछ गीताओं में है और कुछ में नहीं है, पहला अर्जुन का श्लोक। अब बात क्या कर रही है, क्षेत्र का अर्थ क्या और क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या? क्षेत्र का अर्थ खेत देखिए, जो सब ये रोहिणी वाले बेच रहे हैं और गाड़ियों में घूम रहे हैं, इसको खेत बोलते हैं। जिसमें खेत क्या होता है, जिसमें एक होता है किसान। खेत जब आएगा तो उसके साथ किसका नाम याद आएगा, और काम क्या करेगा किसान? खेत में बीज बोएगा, और उस खेत के कोने कोने को किसान जानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर खेत है, आत्मा इसमें किसान है और कर्मों का बीज बोता है और फल खाता है। अब किसान गन्ना बोएगा तो मीठा जूस पिएगा, और किसान अगर भांग बोएगा तो पागलों की तरह घूमता रहेगा, जो बोएगा वही फल होगा ना। अच्छा या बुरा फल किसान को मिलेगा। अब यह हुआ एक क्षेत्र एक क्षेत्र के। अब जो जमीन जो खेत आपका है और जो किसान उसका मालिक है, उसको सारे खेतों का पता है नहीं, लेकिन सारे खेतों का रिकॉर्ड किसके पास है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास है कि नहीं है? गवर्नमेंट का। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वहां से रोड निकालना हो गवर्नमेंट को, तो किसी का खेत ले सकता है कि नहीं ले सकता है? उसके पास सबका रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? तो यहां जो प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे भगवान सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ है, जैसे गवर्नमेंट सारी जमीन को जानती है। किसान केवल अपनी खेत की जमीन को जानता है, लेकिन गवर्नमेंट सब पूरी जमीन को जानते हैं, उनके पास सारा मैप होता है। तो ऐसे हमारे शरीर रूपी खेत के दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा जो किसान है, कर्म का फल बोता है और उसका फल खाता है, और दूसरा परमात्मा, वो कैसा है? साक्षी, अनुमंता, भरता, भोगता, वो दूसरा क्षेत्रज्ञ है। तो यहां प्रभुपाद जी भगवत गीता से तीसरे श्लोक को बोल रहे हैं, 13वें अध्याय के, कि भगवान कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में मैं क्षेत्रज्ञ भी हूं। हे भरतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी हूं। तो एक तो देह को जानने वाला आत्मा है और एक सब देहों को जानने वाला परमात्मा है। क्योंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक वस्तु के, यहां तक के परमाणु के भी मूल तत्व है। अंडांतरस्थ परमाणु चांतरंतस्थ, वे ही असली सत्य हैं। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्राकट्य से जान पाता है। अब ये एक लाइन को समझ लीजिए, किसी भी चीज को देखने से भगवान को जान सकता है बुद्धिमान व्यक्ति। कैसे कैसे जान सकता है? कि भगवान की शक्ति से ये सब हो रहा है। और इसके लिए 10वां अध्याय पूरा भगवद गीता का इस दृष्टिकोण से कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, ये सब मेरे एक अंश के आधार पे स्थित है। मैं इससे अलग बहुत दूर और बहुत बड़ा और अनंत हूं, ये मेरे एक अंश से सारा जगत चल रहा है। तो भगवान को जानने का यहां सिद्धांत क्या है? बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से, बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के मतलब, बुद्धि की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? स्थित प्रज्ञ, बुद्धि की अवस्था है स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है। एक बुद्धि को बोलते हैं सुमेधसा, बुद्धि का दूसरा नाम है मेधा। सुमेधसा किसकी बुद्धि को कहते हैं? जो यज्ञ संकीर्तन प्रायः, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को जानते हैं, उस बुद्धि को कहते हैं सुमेधसा। ये बुद्धि की अवस्था है। और जो स्थित प्रज्ञ है, अभ्यास योग में बैठे हुए समान चित्त वाले व्यक्ति को देखते हैं, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ बुद्धि। एक रितंबरा बुद्धि होती है, मेधा कहते हैं एक को। तो बुद्धि की अलग अलग अवस्था है, और हमारी बुद्धि की अवस्था का नाम क्या है? कृष्ण भावना बुद्धि, कृष्ण भावना भावित बुद्धि। वो बुद्धि क्या? मन बुद्धि। वो कैसे? अरे ये तो सारी दुनिया की है, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। मंद बुद्धि, कलयुग में सब मंद बुद्धि मंद भाग्य, वो तो मंद तो है ही, लेकिन यहां जो आए हैं सब आनंद में है, इनका मंद खत्म हो गया। भगवान के चरण में आने से मंद नहीं रह जाता है। तो बुद्धि की बहुत अवस्थाएं, इसलिए प्रभुपाद ने बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से तो अपनी कौन सी बुद्धि की अवस्था है? मंद, सुमंद मतियो, मंद नहीं भी वो तो ऋषिकेश, सुमंद। सुमंद का मतलब क्या? सुंदर, सुसुंदर। तो मंद सुसुंदर का, सुमंद का मतलब क्या? महापागल, पागल महापागल, मंद। अरे कृष्ण, तो और कोई बुद्धि की अवस्था? एक तो मंद सुमंद मतियो आ गया, मति एक बुद्धि का, और ये मति, मति कृष्ण अस्तु। चेतन महाप्रभु ने रघु रघु रघुनंदन उपाध्याय जो आया था बनारस में अरियल ग्राउंड में, जहां भट्टा के घात भोजन कर रहे थे, तब वहां रघु रघुपति आया था उपाध्याय, उसको कहा था, एक सबको कहते थे कृष्णमति रस्तु, उनको कहा कृष्णमति रहो, सबको कहते थे कृष्णमति अस्तु, तुम्हारी कृष्णमति कृष्ण में लगी रहे, उनको कहा कृष्णमति रहो, तुम सदा कृष्ण के भावना में रहो। तो वहां मति शब्द बुद्धि के लिए है। तो मति चेतना महाप्रभु किसी को आशीर्वाद, वैसे मेरे ख्याल में जो संत साधु आशीर्वाद जब देते हैं तो कहते हैं कृष्णमति अस्तु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आदि आशीर्वाद ये देते थे कृष्णमति अस्तु, तुम्हारी मति तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लगी रहे, ये आशीर्वाद होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिनको ऐसी आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी बुद्धि वाले लोग, प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति, प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी शक्ति के, उनकी शक्ति मतलब भगवान की शक्ति के प्राकट्य से जान पाता है। इसमें भगवान को कैसे देखेंगे? इसमें क्या है? एक गिलास है, गिलास ने क्या है? और पानी को पिया, क्या याद आना चाहिए? रसो अहम अपसु कौन थे, ये इसका अर्थ, ये इस लाइन का, कि भगवान की शक्ति से भगवान को सुमरण भक्त को हर वस्तु में आता है। सांप दिख जाए तो भगवान कैसे याद आएगा? कालिया के ऊपर नाचे थे, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और एक चेतना महाप्रभु के भक्तों में एक ऐसा था, वो मुरली सांक वाले को देख के तो नाचने लगा, पागल हो गया, फिर उसको कालिया ना दिखाई देने लगा। तो सांप को देख के भी भगवान याद आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और कोई ऐसा उदाहरण, तीन चार ऐसे उदाहरण दो जिसको याद, देख के भगवान याद आ जाए। हाँ हाँ, सूर्य चंद्रमा देखने से क्या बोला माता जी? क्या बोल रही? मोर, अंग्रेजी वाला के हिंदी वाला? मोर मोर, ज्यादा आए तो भगवान दिखता है, मोर मोर है? वो मोर नहीं, पीकाक वाला नहीं, ये मोर अंग्रेजी वाला। माता बड़ी होशियार है, मोर उसको पर... ग्रेट मोर है? जय हो माता जी। मोर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आ जाएगी। और बांसुरी, बांसुरी देखने से भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आ जाएगी। ये तो कृष्ण के अपने हाथ के अंग है, ऐसी जो 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 देख के कृष्ण फिर भी याद आए। साउंड, शब्द खे पौरुषम अस्मि, शब्द खे पौरुषम अस्मि, शब्द खे, पहला शब्द खे, खे मतलब आकाश, आकाश में शब्द मैं हूं, और क्या? हवा को देखकर, हवा को देखा है कभी? हवा से भगवान कैसे याद आएगा बोलो? पवन सुत हनुमान याद आना चाहिए। अरे हवा से पवन सुत हनुमान, राम का इतना बड़ा भक्त, राम के लिए सब कुछ बलिदान दे सकता है, तो याद आएगा कि नहीं आएगा? हवा से भीम याद आना चाहिए, वायु पुत्र है भीम, क्या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की पांडवों ने, उनके भगवान मित्र थे, याद आना चाहिए ना। ऐसे याद आना आ सकता है कि नहीं? और कुछ एक कथा मैं कल बता रहा था, एक भक्त गया जगन्नाथपुरी, भक्त जगन्नाथ का भगवान पास में ओडिशा के गांव से जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथ का सुंदर दर्शन देखा, बड़ा आनंद में नाचा, घर आया, पत्नी ने घर में बनाया था भात चावल और दिया पत्थर के लाल प्लेट में, पत्थर की प्लेट लाल होती है ना जैसे, और सब्जी बनाई थी पालक की, लाल प्लेट में सफेद चावल रखा, ऊपर पालक रखी और ये नाचने लगा, रोटी खाए नहीं नाचे, लोगे पागल हो गया, किसी ने इसको टोना किया, जगन्नाथपुरी में हुआ क्या, सब नाच रहा है नाच रहा है। शहर के मुखिया को बुलाया, बोला इसको हो क्या गया है? इसने पूछा क्या कर रहे, बोला इसको कैसे खाऊं, देखो लाल लाल सफेद उसके बीच में काला, जगन्नाथ की आंख दिख रही है, देखो जगन्नाथ की आंख है ना, लाल लाल के ऊपर सफेद, सफेद के ऊपर काला है, लाल परात, लाल मिट्टी की परात, ऊपर सफेद चावल, उसके ऊपर पालक की काली सब्जी, खाए नहीं नाचे। तो घर वालों के भूख मरेगा, करेंगे क्या? तो उसने कहा पत्नी को, तुम ऐसे करो, एक बर्तन में साग रखो, एक में चावल रखो और अलग अलग करके दो, अपने आप खाएगा। जब अलग किया तब उसने खाया, तो उस बेचारे गांव वाले को वो क्या कहेंगे, पात्र और चावल और पालक की सब्जी से जगन्नाथ दिख गया, और हमको सामने खड़ा है तब भी नहीं दिखता है। तो हर एक वस्तु में ये प्रभुपाद जो लिखते हैं, जिसकी बुद्धि, बुद्धि की विभिन्नता से वो देख सकता है। अगर बुद्धि में क्या, एक ही आदमी एक चीज को अपनी बुद्धि से अलग देखता है, एक स्थान शांत देखा जाए तो साधु कहे इधर कितना भजन अच्छा होगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और चोर देखे तो कहे यहां छुपने के लिए कोई नहीं पकड़ेगा, यहां बैठ सकता हूं। तो चीज एक ही है लेकिन दोनों की बुद्धि अलग हो गई, काम करने वाले अलग हो गए। तो आप प्रभुपाद जी, दो लाइन लास्ट बची है, हाँ जी, हाँ, प्रसाद तो खाके सारे भक्त ही बने हैं, प्रसाद तो भगवान ही है, समझ में आना चाहिए, प्रसाद से भगवान की स्मृति आती है। बहुत अच्छा, अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीन गुणों से व्याप्त है और मनुष्य अपने गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। यहां प्रभुपाद जी का इस श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है। यह सारा ब्रह्मांड तीन गुणों से व्याप्त है और जैसी व्यक्ति जिस गुण के प्रभाव में होगा वैसे ही दुनिया उसको दिखेगी। जैसे अभी हमने आपको कहा, सतोगुण का व्यक्ति खाली स्थान देखेगा तो कहेगा भजन के लिए अच्छा है, रजोगुण का व्यक्ति देखेगा तो यहां कुछ छुपा के रख दिया है कोई नहीं देखेगा, और तमोगुण का व्यक्ति देखेगा तो शराब पीने के लिए कोई नहीं पकड़ेगा, चलो इधर चल के छुप के पीते हैं, पुलिस नहीं आएगी। तो उसी जैसा जिसका गुण है उसी चीज का वो उपयोग उस हिसाब से करेगा जिस गुण में वो है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण का उद्देश्य है कम से कम तमो और रजो गुण से ऊपर उठो और सतो गुण में आओ। ये पहला श्री कृष्ण का जो जहां तीन गुणों का विभाग है वहां कहने की शैली है सत्व और फिर एक शब्द बोल के तथा रजोतमो। तथा रजोतमो का मतलब रजोतमो में मत जाओ, कम से कम सत्व में स्थित हो। इसलिए प्रभुपाद ने गीता के इस संदेश को अमेरिका में कहा कि मैं सत्वगुण में के द्वारा ब्राह्मण बनाने के लिए इस आंदोलन की स्थापना कर रहा हूं। तो स्थापना कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना हमको सतोगुण के स्तर के ऊपर लाने के लिए है। उसके बाद जो भक्त सतोगुण में स्थापित हो जाते हैं उनके लिए कृष्ण का संदेश है निस्तुर्गुण भव अर्जुन, तीन गुणों से ऊपर आ जा, लेकिन पहले कम से कम सतोगुण में आना चाहिए। और सतोगुण की पहली पहचान क्या है? सूर्य उगने से पहले उठना, इल्यूमिनेशन इन ऑल सेंसेस। हमारी सामान्य भाषा ये है सुबह सूर्य उगने से डेढ़ घंटा पहले उठना सतोगुण की पहली पहचान है। बस ये क्राइटेरिया से सतोगुण की पहचान होती। शुद्धता दूसरी, उसके जीवन पवित्र रहने की जिज्ञासा करेगा, बाहर से स्नान आदि से और अंदर से भगवत नाम के उच्चारण से अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करेगा, जो सतोगुण में होगा। लेकिन कल हम जा रहे थे यहां से वृंदावन, तो एक भक्त ने पूछा कि डेढ़ दिन ट्रेन में रहेंगे पूरी जाते हुए, तो सुबह स्नान कैसे करेंगे? तो इस सतोगुण का दिमाग में था तब ये विचार आया ना, नहीं तो ट्रेन में कितने लोग जाते हैं, वो न स्नान घर से करके निकलते हैं, न ट्रेन में करते हैं, न उतरते हैं वहां करते हैं। कहीं गर्मी हो गई, कपड़े गीले हो गए तो मजबूरी में करना पड़े तो और बात है, नहीं तो ऐसा सोचता कोई है कि ट्रेन में जाऊंगा स्नान कर? आपने कभी सोचा है, किसी ने पूछा है आपको आज तक ये प्रश्न कभी पूछा है कि ट्रेन में मेरा डेढ़ दिन लगेगा, मैं स्नान कैसे करूंगा? ये सत्वगुण दिमाग में होता है तब ये प्रश्न होता है। हमने कहा दो रास्ते बताता हूं आपको, हम क्या करते हैं वो बताते हैं। एक गमछा अपने हाथ में रखते हैं रेडी, जहां 15 मिनट गाड़ी खड़ी होती है पानी भरने के लिए, गाड़ी जब पानी भरे तो एक पाइप गाड़ी के उसमें लगे, तीन पाइप बीच में खाली होते हैं और 30 भक्त उस टाइम में स्नान कर सकते हैं। क्रर प्रर स्नान बार आ गया अंदर, नो प्रॉब्लम। ये रेगुलर स्नान भक्तों का उस स्टेशन पे है जा, और नहीं तो 2 लीटर की बाटल एप अपने साथ रखना, पानी जो बाहर का नल है उससे भरना, और भी बुद्धिमानी है तो इतना पाइप साथ रखना, उसके अंदर बोतल जाएगी नहीं, भर के रेडीमेड जाओ जन बाथरूम में नहा के, बाहर 2 लीटर बहुत है, नहाओ और बाहर आ जाओ, कौन सी परेशानी, कर सकते अगर आपकी इच्छा है तो, करने में कोई समस्या नहीं। 2 लीटर पानी से सुनाना, हम तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि राजस्थान में हमारे पास घी के मटके भरे होते थे, पानी मिलता नहीं था, कोई कहता था नहाने के लिए पानी, बोला नहीं ये घी से नहा लो, तो कहते थे घी चाहिए तो देते हैं, पानी नहीं है, घी घर में होता था, पानी बाहर से लाना पड़ता था। तो 2 लीटर पानी तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास, बाटल साथ रखो, नहीं तो उस स्टेशन का इंतजार करो जहां गाड़ी पानी भरती है, वहां नहाओ, हो गया। और उसके बाद अगर एसी में टिकट है तो 2 लीटर में स्नान हो जाएगा, वो खुले में है तो गमछा दरी में जब लगोगे ना तो एयर कंडीशन हवा भी आएगी ठंडी ठंडी, जो गीला गमछा जो टांगों के बाहर सूखने के लिए, तो डबल एक्शन, नहाया भी और ठंडी हवा भी खाया। हरे कृष्णा, ये सतोगुण की पहचान है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की। अब किसी के प्रश्न के लिए कोई समय नहीं है। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। पचास मिनट हुए कि 59 मिनट हुए? 59 हो गए, एक घंटे से 1 मिनट कम है। हरे कृष्ण, पहले भजन में मन ऐसे ही हो गया, कौन सी